اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ ٹنڈو بھاگو تو تسی صحیح کر رہے ہو، میرا سلام آج ہی کرانی چاہیے۔ ابھی حضرت جی نے ارشاد فرمایا، سعید صاحب آئے بیان کر کے گئے، بڑی علمی باتیں بتلا گئے آپ کو۔ مجھے بلا کے حضرت جی نے فرمایا کہ مختصر سا بیان کر دیں، تو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تو میں تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ یہ رونق لگی رہے خدا کرے، اور حضرت جی اسی طریقے سے جلوہ فروز ہوں، بیٹھے رہیں کرسی پہ، اور میں ایک دعا کرتا ہوں اور آپ سب آمین کہنا۔ آمین۔ اے میرے پروردگار، جو تو نے روحانی طاقت حضرت جی بیگ صاحب کو عطا کر رکھی ہوئی ہے، اے اللہ اسی کے صدقے جسمانی طاقت بھی عطا کر دے۔ آمین۔ ان کو طویل عمر عطا فرما، صحت تندرستی کے ساتھ۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ ارشاد حضرت جی نے فرمایا اور میں آ گیا، اور میں سب کچھ ہی کہہ دوں جو میرے اندر ہے، دل میں ہے، جو بعد میں جھڑکیاں کھا لوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں وہی باتیں کروں جو حضرت جی سے میں پوچھ چکا ہوں۔ یہ بتلانے کے مقاصد، ابھی صحیح صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ضرور جایا کریں، کہہ رہے کہ بڑی تھکن سی، میں نے کہا نہیں حضرت بلائیں، ضرور جایا کریں، حضرت کی باتیں بتلانی ہیں، استادوں کی باتیں بتلانی ہیں، بڑے استادوں کی باتیں بتلانی ہیں، ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں کہہ ہی رہا تھا تو حضرت جی نے آواز دے دی سعید صاحب کو، وہ آگے اور بیان کر کے گئے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ میں یہ بتلاؤں گا اور کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اتار دے، کہ حضرت جی بیگ صاحب کس پائے کی ہستی ہیں۔ اب میں نے دیکھنا بھی نہیں ان کی طرف، مجھے کھڑا کر دیا۔ تو میں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ میرے اللہ کو پسند آئے گا، میرے استادوں کو، بڑے حضرت جی کو ضرور پسند آئے گا۔ اس کے بارے میں میں چھوٹی سی ایک بات بتلاؤں، پھر آگے میں شروع کرتا ہوں۔ سیالکوٹ کا اجتماع تھا، تو امیر جماعت چیما صاحب نے، میں بھی وہیں پہ موجود تھا، تو کہا کہ حضرت جی کو ریسیو کرنے جانا ہے روڈ پہ۔ ہم چلے گئے چند ساتھی، وہاں گئے حضرت جی، وہاں سے پیغام ملا کہ حضرت جی سمڑیال مغرب کی اذان ہو گئی ہے، وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، میجر عمر حیات صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ اطلاع دیتے رہے۔ تو وہیں پہ ڈھاسنا لگا کے ہم نے بنایا پروگرام کہ حضرت جی آ جائیں گے تو ہم جا کے مغرب پڑھیں گے۔ تو اس کے گاڑی کے ساتھ ہی میں نے ڈھاسنا لگایا، تو کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، اور میں دیکھتا کیا ہوں، بالکل اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علاوہ بہت سی ہستیاں وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں حضرت جی کا، کہ بیگ صاحب آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور میں پچھاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ کو تو پچھان لیا، اور کچھ جماعت کے تھے ہمارے جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ساتھی بھی نظر آئے، اور کچھ کو میں نہ پچھان سکا، ان کا سب احترام کر رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہستیاں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ ہند کے ہیں، انڈیا سے ہے تعلق ان کا، انڈیا کے مشائخ ہیں، استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ کہہ کے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بارڈر کیسے؟ انہوں نے کہا ان کو بارڈر وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بارڈر تو ہم لوگوں کے لیے ہے۔ تو اتنے میں پتہ، اب آواز آتی ہے حضرت جی آ گئے، حضرت جی تشریف لے آئے، میں حضرت جی سے ملاقات کی، ریسیو کیا، حضرت جی مرکز پہنچے۔ تو اب میں نے پروگرام بنایا کہ صبح انشاءاللہ تعالی میں حضرت جی کو یہ خواب سناؤں گا۔ تو رات کو مجھے خواب میں، ابلیس کے بڑے حملے ہوتے ہیں، اللہ تعالی محفوظ رکھے، حضرت کی شفقت رہے، تو حضرت جی کی تمام اولاد اللہ کے فضل و کرم سے ابلیس کے حملوں سے محفوظ ہے، تلق قائم ہونا چاہیے، مضبوط قسم کا، بہت حملے کرتا ہے، بڑے خواب بھی، جب سے حضرت جی نے فرمایا ہوا ہے کہ خواب سے حساب سچے سچے دیکھتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی ایسا خواب آ جاتا ہے کہ میری نیند شیند اڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا لو جی یہ کچھ ہو جانا ہے، اب میں پھر صدقہ خیرات کر کے پھر حضرت جی سے رابطہ کرتا ہوں، پھر پوچھتا، تو حضرت جی فرماتے ہیں نہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے نا منع کیا گیا خواب میں، कि आप ये बात नहीं करनी, नहीं बतलानी बेग साहब को। और वो मुझे नज़र भी आए कि कोई बड़ी पहुंची भी कोई हस्ती है जिन्होंने मना किया, मैं खामोश हो गया, चुप हो गया, मैंने नहीं की, किसी से भी नहीं की, खामोश हो गया। लेकिन मेरे दिल के अंदर थी बात के बड़ा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है ये कि मशायख इंडिया के भी आए हुए हैं, बहुत सारे मशायख हैं, हम इस पे काय का फख्र करेंगे जी, हम गए हैं साथी लेने, वहां पे तो बहुत बहुत हस्तियां बड़ी बड़ी जो हैं हजरत के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। मैं खामोश हो गया। खामोश होने के बाद उसके बाद चंद थोड़े ही अरसे के बाद कराची का इज्तिमा शुरू हुआ। कराची हजरत जी तशरीफ लाए, तो जिस दिन तशरीफ लाए उसकी दूसरी रात को मैंने ख्वाब में देखा उस्तादों को, बड़े उस्तादों को, हजरत जी को, कि हजरत जी फरमा रहे हैं कि वो जो तुमने ख्वाब देखा है ना वो बयान करो। तो मैं हजरत जी से फरमाता हूं ख्वाब में ही कि मुझे तो मना कर दिया गया था, उन्होंने कहा कोई नहीं, वो अबली इसने मना किया था, आप वो ख्वाब बयान करो, साथियों को बतलाओ। तो मैं हजरत जी से दरख्वास्त करता हूं ख्वाब में कि हजरत जी अब मुझे हजरत बेग साहब खुद बुलाएं तो मैं जाऊं, मैं इसका तस्करा नहीं करूंगा, ऐसे मफहूम है उसका। तो ये कह के मेरी आंख खुल गई, आंख खुली। कराची के अंदर रिकॉर्ड है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कराची में कभी हजरत जी ने मुझे बुला के कहा हो के बयान कर दो। मुर्शिदाबाद बुलाते हैं, लाहौर में बुलाया गया, पिंडी में भी बुलाया मुझे, मैंने बयान किया, कराची में मुझे नहीं याद आता। अब मैं बैठा हुआ था तो हजरत जी बैठे इसी तरीके से, और एक साथी को बुलाया, उसके बाद मेरे दिल में वो ख्वाब के मैंने देखा है। तो जैसे ही मेरे दिल में आया तो हजरत जी मुझे कहते हैं जई साहब कहें आ जाए। अब मैं गया, मैंने इजाजत तलब की, मैंने कहा हजरत आपने मुझे बुलाया और मैं कह दूंगा अब सब कुछ जो मुझे मेरे दिल में है, मुझे इजाजत उधर से मिली है। तो मैंने ये ख्वाब फिर सारे का सारा सुनाया और उसके बाद हाथ बांध लिया हजरत जी के, कि हजरत जी मुझे माफ कर देना अगर इसमें मैं कोई गलती कर गया हूं। तो हजरत जी मुस्कुराए और कहते हैं आपने सच्चा ख्वाब देखा, वो मुशायख थे, ये हैं वो हस्ती। और ये मेरे ख्याल कोई करोड़वां एक हिस्सा है, एक साथी को, मेरे अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, कुछ थोड़े से महसूसात हो गए, पता चल गया। तो इसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी तस्दीक हो गई। हजरत इंडिया तशरीफ ले गए थे, इंडिया के इज्तिमा में गए हुए थे अभी पीछे, जो हजरत जी तशरीफ ले गए थे, उसमें मैंने एक बड़ा खूबसूरत बड़ा ही अच्छा ख्वाब देखा। वो मैंने ये देखा कि मस्जिद नबवी में हजरत जी का घर है और हजरत जी बेग साहब की पूरी फैमिली वहां पे क्याम पजीर है। मस्जिद नबवी की बाउंड्री लगी हुई है और वहां पर हजरत जी बेग साहब की पूरी फैमिली जो है वो वहां पे क्याम पजीर है। और मुझे बताया गया कि वो बेग साहब की फैमिली घर वाले हैं, फैमिली है, वो घर उनका है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शफकत है उनके ऊपर, बड़ा ख्याल करना। तो मेरी आंख खुल गई। अब आंख खुली तो फिर मैंने ये ख्वाब हजरत जी से पूछा तो हजरत जी ने फरमाया इससे अच्छी और खुशकिस्मती कौन सी है कि वहां पे। तो बहरहाल ये तो इनका हजरत जी का बड़ापन था, ये बातें बतलाई। अब मैं अपने भाई जो हम पे बीती, बहुत से हमारे साथी इंतकाल कर गए और अल्लाह ने हिजाब हटाए और उनकी हालत देखी कब्र के अंदर, अल्लाह ने दिखाई तो वो देखा कि हजरत जी की शफकत से, हजरत जी की तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेड़ा पार किया हुआ है, खुश हैं कब्र में। लेकिन जब अपने भाई के ऊपर, हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाजी खलील साहब, मैं उनकी जिंदगी में भी हजरत को बतला चुका हूं कि वो आशिक थे हजरत जी आपके इश्क में, दीवाने थे वो, उनकी जुबान से जब आपका नाम निकलता था, हम दोनों भाई इसकी तस्दीक करते हैं कि सच्चे आशिक थे हजरत जी के। उनका जब इंतकाल हुआ तो हजरत जी अबू धाबी में थे, हजरत जी अबू धाबी में थे, मैंने इतला कर दी हजरत जी को, गाजी साहब को इतला दी कि हजरत जी को बतला दिया जाए। सुबह हजरत जी से फोन पे बात हुई, तफसीली बात हुई, हजरत जी से दुआओं की दरख्वास्त की, हजरत जी का नहीं आप रब्ता रखना, और सारा किस्सा पूछा क्या हुआ, सारा बतलाया। अब हकीकत बात है कि पूरी तवज्जो जो है वो हाजी साहब के ऊपर वो लेके आए वहाँ से। हम जिस वक्त उनके बरखुरदार बड़े बेटे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ी बुरी हालत थी, सही साहब की भी, मेरी भी, घर वालों की भी, रो रो के बुरी हालत। अब जिस वक्त हजरत जी ने तवज्जो फरमाई, तवज्जो फरमाने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिल गया कि उनको जब गुसल देना शुरू किया हमने, मैं था, सही साहब थे, पेशावर के साथी हैं साबर शाह साहब, शहजाद साहब, जहूर साहब, हम सब इकट्ठे गुसल दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे। उस गुसल के अंदर आप यकीन माने कि मैंने महसूस किया कि जैसे हजरत जी यहां पे मौजूद हैं और हजरत जी पूरी तवज्जो फरमा रहे हैं हाजी साहब के ऊपर। और ये मेरा एक वहम था या मैं हकीकत बात आपको बता रहा हूं कि मैंने सही साहब को हिला के बतलाया कि ये देखें आप, ऐसे लग रहा है कि जैसे हाजी साहब अभी उठ के बैठ जाएंगे। मैंने कहा इस तरीके से, और पूरा जिस्म रबड़ की तरह, जिधर वो घुमा रहे हैं यहां सब बैठे हैं, गुसल देने वाले वैसे ही घूम रहा है, नरम बिल्कुल। उसके बाद उनकी तदफीन का मरहला आया और कब्र में उतारा गया। जब कब्र में उतारा गया तो मेरे दिल में आया कि मैं हजरत जी को फोन करके बतलाऊं कि अब कब्र में उतार दिया गया। तो मैंने महसूस किया बकायदा तौर पे इसी तरीके से कि हजरत जी मेरे पास खड़े हुए हैं और कब्र के ऊपर पूरी तवज्जो। और फिर बाद में मैंने सही साहब को, उनके घर वालों को आके जब बतलाया, बड़ी तसल्ली, उनकी बेटी दुबई से आई हुई थी, रो रो के बुरा हाल था उसका, सख्ते में चली गई हुई थी। मैंने कहा अल्लाह ने बड़े ही करम कर दिया है, खुदा ने एहसान अजीम फरमाया, मैंने हाजी साहब को बड़ी अच्छी हालत में देखा है और हजरत जी को तवज्जो फरमाते हुए मुझे अल्लाह ने दिखाया है। अब वहां से हम आ गए, हाजी साहब हमारी पूरी लाइफ में हमने जब से होश संभाली है, एक उनमें कमजोरी थी, वो अकेले सोते नहीं थे। ये सही साहब भी हैं यहां पे, वो अकेले कमरे में नहीं थे सोते, कोई ना कोई पास होना चाहिए। और जब पूछते थे वो बकायदा कहते थे कि मुझे अकेले डर लगता है, अकेले मुझे डर लगता है। तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई रहा है और उनके साथ होते थे। अब जब दफन करके हम आ गए, आप यकीन माने मैं अकेला बैठ के रोया कि हाजी साहब अकेले तो यहाँ पे सोते नहीं थे, रहते नहीं थे, कब्र में हम डाल के आ गए हैं। उसी रात को मैंने ख्वाब देखा कि बहुत खुश हैं और मुझे इशारा करके बतलाया और नाम लेके बतलाया कि मैंने हजरत बेग साहब से दरख्वास्त की थी तो उन्होंने ये खादम मुझे दे दिए हैं, अल्लाह से मांग के दे दिए हैं, ये मेरी खिदमत के लिए हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का खात्मा जमात के साथ करे। और खुदा शाहिद है, अल्लाह की जात देख रही है, मैं हकीकतन बतलाता हूं, जमात के साथ इनकी मोहब्बत के साथ मौत आ गई तो वो हयात है, मौत नहीं है। अल्लाह ताला की जात इनको भी सलामत रखे, खुदावंद कुदूस, और हमें भी अल्लाह ताला इनकी जूतियों के साथ चिपकाए रखे। किसी साथी को बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, अल्लाह ना करे कि कोई जमात से टूट जाए, किसी गलतफहमी में कोई ना रहे। तमाम का तमाम फैज अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ने जो ताकतें अता कर रखी हुई हैं ये सीने से आ रहा है, सीना पसीना चलता हुआ इधर सीने से आ रहा है और हमारे सीने मुनव्वर हैं। यहाँ पे कोई साथी महरूम नहीं है, हर साथी पे हजरत जी की बड़ी तवज्जो है और हर साथी अपना अपना हिस्सा पा रहा है। खुदावंद कुदूस हम सबको इस्तकामत दे, अल्लाह ताला की जात जोन सी है।